نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم کتاب علامات قیامت کا بیان اس کے پہلے ٹاپک سے بات شروع کریں گے. اور جیسا کہ ہم نے کتاب کے انٹرو میں دیکھا تھا کہ اس کتاب کو ہم یا اس ٹاپک کو تین حصوں میں دیکھیں گے. پہلا موضوع جو ہے وہ فتنوں کے بارے میں, فتنے کیسے آئیں گے اور کیا حالات ہوں گے, اور اس کے بعد پھر علامات صغرا, اور پھر آخری حصہ جو ہوگا وہ علامات کبرا کا ہوگا. ہمارا آج کا سیشن جو ہے یہ فتنوں والی بات, ہم احادیث کو پڑھ کے دیکھیں گے. خاص طور پہ ہمیں اس سے اندازہ بھی ہوگا کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس دور میں وہ باتیں نکلیں جو آج بھی ہم سب کے سامنے مچھلے رہا ہیں. طریقہ کار یہی ہوگا کہ ہم اس کے مین ٹاپک کو, جو اس میں سے آپ کو دکھ رہا ہے کہ مسئلہ نمبر ایک, مسئلہ نمبر دو, اس طرح سے اس سے مین تھیم لیں گے, اور بیچ میں سے دوسری چیزوں کو تھوڑا بہت ڈسکشن میں لیں گے. تو شروع کریں گے. پہلا باب ہے ظہور الفتن, فتنوں کا ظہور. جو ساتھی کتاب سے دیکھ رہے ہیں, کتاب کا 102 نمبر صفحہ. پیج ایسے پلٹیں کہ آپ کے پیج کے پلٹنے کی آواز بھی آپ کو بھی نہ سنائی دے. تو بیسیکلی فتنہ کہتے کس کو ہیں, اس کو تھوڑا سا سمجھیے. اور یہ جو میں ایکسٹرا باتیں بتاؤں گی, یہ آپ لوگ اپنی بک کے سائٹس پہ جہاں خالی جگہ ہے, یا اگر آپ کے انڈیکس پیپر ہیں جو بعد میں آپ چپکا سکتے ہیں, کسی بھی جگہ لکھ سکتے ہیں تاکہ جب کبھی آپ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ کے اپنے لیے ہوئے نوٹس جو ہیں وہ آپ کو فائدہ دے سکیں. تو فتنہ کا لفظ جو ہے فا تا نون سے ہے. فتنہ کہتے ہیں کسی بھی دھات کو آگ میں جلانا کہ اس کا کھوٹ الگ ہو جائے. کبھی آپ نے سونے چاندی کے پگھلانے کا تذکرہ سنا ہوگا. تو جب سونے کو پگھلاتے ہیں تو اصلی سونا جو ہوتا ہے وہ بالکل اوپر آ جاتا ہے یا نیچے تہہ میں چلا جاتا ہوگا, اور جو کھوٹ کھپٹ اس میں جو بھی امینیٹیز ہوتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں. تو بالکل فتنے وہ حالات ہوتے ہیں جس میں انسان کے اندر سے ایمان اور منافقت الگ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بعض دفعہ ایسے حالات اس لیے بھی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو گھلے ملے بیٹھے ہیں, ہر ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا ہے, تو اس میں سے ہر ایک اپنے ایمان کی بنیاد پہ الگ ہو جائے. تو قیامت سے پہلے کچھ ایسے حالات ہوں گے جس میں سے پہلی چیز حدیثوں میں کیا, اگر آپ دیکھیں تو فتنوں کے ظہور کے نیچے لکھا ہوا ہے اعاذنا اللہ منہا بکرمہ ومنہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہم کو محفوظ رکھے. یہ جو اعاذنا ہے نا, یہ وہی ہے جس کو واحد میں اعوذ باللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اعوذ باللہ واحد کے لیے, اور یہاں یہ کہ نا ہم سب کے لیے. اللہ ہم سب کو ان سے بچا لے اپنے کرم سے اور اپنے احسان کے ذریعے. پہلی چیز اس بارے میں کیا ہے؟ قیامت سے پہلے فتنے بارش کے قطروں کی طرح پے در پہ ظاہر ہوں گے. مطلب کیا؟ کہ ابھی ایک فتنہ ختم ہی نہیں ہوگا تو دوسرا فتنہ ہو جائے گا. آئیے اس کی دلیل پڑھتے ہیں. حدیث ہے حضرت اسامہ بن زید سے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ کرام سے پوچھا, جو میں دیکھتا ہوں کیا تم دیکھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا, میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا. تو آپ امیجینیشن میں بارش کو لے آئیں, ایک قطرے پہ دوسرا قطرہ, اور آج آپ دیکھ لیجئے چھوٹے بڑے فتنے موجود ہیں. کبھی ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں کوئی فتنہ آ جاتا ہے, کبھی بچوں کی طرف سے کوئی فتنہ, کبھی گھر والوں کی طرف سے, اسی طرح خاندانوں میں کوئی ہمارے لیے فتنے کا ذریعہ بنتا ہے, اور اجتماعی طور پہ تو دنیا میں آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں اسلام کے خلاف کوئی فتنہ اٹھ جاتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی کی اس دور کی بات سچ ہوتی دکھتی ہے. دوسری بات, قیامت کے قریب ہر طرف فتنے ہی فتنے اور مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے قریب دنیا میں سوائے مصیبتوں اور فتنوں کے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. آپ دیکھیے کہ قیامت کے قریب حالات خراب سے خراب ہو رہے ہیں نا. تو اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آج ہم قریب ہیں نا, تو اس دور کا امن چین سکون وہ اس سے زیادہ تھا. بس اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ آج کل ہم بہت پڑھے لکھے دور میں ہیں, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियली लोगों ने तरक्की कर ली, तो आजकल हम बहुत खुश हैं। कैसे? आप इसको ऐसे सोचिए जैसे आपकी नानी का वक्त था या दादी का था। हाय वो बेचारी हाथ से आटा गूंथती थी, हाय चक्की में आटा पीसती थी, हाय हाथ से कपड़े धोती थी। हम जब अपनी ज़िंदगी सोचते हैं टच सिस्टम, तो ज़ाहिर क्या लगता है कि हम ज़्यादा अच्छे दौर में आए हैं, हालांकि ये गलत है। उनको बिजली के करंट का कोई फितना ही नहीं था। उनका पाँव किसी पक्के फर्श पे फिसल जाएगा इसका फितना ही नहीं था। तो हमेशा याद रखिए कि वक्त के करीब हम जो इन्वेंशंस देख रहे हैं, जो तरक्की हो रही है, एटम बॉम्ब का फितना उस दौर में था। आपको पता है कि कहते हैं कि एटम बॉम्ब बनाना इतना मुश्किल नहीं है, कोई भी बना ले, लेकिन बनाने के बाद उसको रखना सबसे मुश्किल काम है। ज़रा सी उसकी मिसप्लेस हुई अपने मुल्क में चल जाएगा, समझ आ रही है? तो अब जितनी भी चीज़ें पैदा हो रही हैं इंडस्ट्री के नाम पे, इसके फितने, कंप्यूटर्स देख लीजिए, फ़ोन देख लीजिए, इनकी रेडिएशन, इनके अंदर से निकलने वाली वेव्स, हर दिन हमारे लिए मुश्किल हो रही हैं। खाना पहले लकड़ियों की आग पे लोग पकाते थे, आज हम कहीं माइक्रोवेव, कहीं हेलोजिन, कहीं फुलां जिन, फिर बाद में थोड़े सालों बाद रिसर्चेस आ जाती हैं कि ये जी कैंसर पैदा हो रहा है, इससे ये हो रहा है। आज भी देखिए जख्मों पे लकड़ी की जो आग होती है ना, उसका बुरादा लगाते हैं तो फौरन ख़त्म हो जाती है। जो खाना कच्ची आग पे पकता है वो एंटीसेप्टिक हो जाता है, जर्म्स मर जाते हैं। तो बहरहाल ये है कि दिन ब दिन फितने बढ़ते ही जाएंगे, जैसे जैसे कियामत करीब आएगी वैसे वैसे फितने बढ़ते जाएंगे। हज़रत ज़ुबैर बिन अदी कहते हैं कि हम अनस बिन मालिक की खिदमत में हाजिर हुए और हुज्जाज की तरफ से जो मुसीबतें हमें पहुंची थी इनका शिकवा किया, तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हों ने फरमाया कि सब्र करो, तुम पर ऐसा ज़माना आने वाला है जिसमें हर आने वाला दिन तुम्हारे आज से बदतर होगा, हत्ता कि तुम अपने रब से जा मिलोगे। मैंने ये बात तुम्हारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, और इस रिवायत को इमाम बुखारी ने नकल किया। तो आप और मैं सोच सकते हैं कि ये सारी बातें कितनी तेज़ी से हमारे सामने आ रही हैं। जिन सारी बातों का खुलासा क्या है कि आने वाले दौर के तकाज़ों से निपटने के लिए हम सबको, अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को हर उस चीज़ से लैस करना है जो फितनों के दौर में उनकी हिफाजत करे। तो आजकल आप जो दुआएं सीख रहे हैं इसमें, और इंशाल्लाह हम सीखेंगे और भी, तो ये अब अपने बच्चों को सिखानी शुरू कर दें, और साथ नसीहत कर दें कि बेटा ये मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, तुमने अपने बच्चों को सिखानी है, फिर इसके बाद वो अपने बच्चों को, तो गोया कि हम नस्लों की हिफाजत करेंगे इन दुआओं के ज़रिए से। फिर इसके बाद अगला फितनों के नाते से जो टॉपिक है वो क्या है, शिद्दतुल फितन, फितनों की शिद्दत क्या होगी। क़यामत से पहले जाहिर होने वाले फितने इतने शदीद होंगे कि जिंदा लोग मुर्दों पर रश करेंगे। दलील, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि एक आदमी दूसरे आदमी की कब्र पर से गुजरेगा तो कहेगा काश इसकी जगह मैं होता। इसे बुखारी ने रिवायत की। इब्ने माजा की रिवायत में ये आता है कि इंसान ये तमन्ना अपनी दीनदारी की वजह से नहीं करेगा बल्कि दुनिया के मसाइब और आलाम से तंग आकर करेगा। आप सोचिए, यानी बाज़ रिवायतों में यहाँ तक आता है कि इंसान कब्रिस्तान से गुजरेगा तो ज़मीन से क्या कहेगा कि काश मैं ज़मीन की पुश्त की बजाय इसके पेट में होता। आज भी आप देखिए जब भी कभी किसी को कोई मुश्किल होती है तो क्या कहते हैं, अच्छा मौत आ जाए तो हमें सुकून मिल जाए, ये कहते हैं ना। और आज भी इतने फितने फिर भी नहीं है कि हम कहें कि हम मर जाएं। तो आप सोचिए कि फिर आने वाले हालात में कितने शदीद फितने होंगे। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को बचाए। बाज़ फितने ऐसे तुंदो तेज़ होंगे कि वो मुसलमानों की हर चीज़, मसलन दीन, ईमान, मुआशरत, तहजीब और तमद्दन वगैरह सब को बहा कर ले जाएंगे। हदीस है हज़रत खुज़ैफ़ा से, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने शुमार करते हुए फरमाया, इनमें से तीन फितने ऐसे हैं जो करीब करीब कुछ ना छोड़ेंगे। इनमें से बाज़ फितने ऐसे भी होंगे जो गर्मी की आंधियों की तरह होंगे। इनमें से कुछ छोटे होंगे और कुछ बड़े होंगे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। अब आप ज़रा इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करके देखें क्या क्या फितनों में बह जाता है मोमन। पहले तो दीन ही बहता है ना। आप देखिए कि लोग रिस्क नहीं ले सकते, दुनिया का रिस्क तो फिर भी लेना ही पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन क्या आज कोई ऐसा फितना है जिसकी वजह से हमारा दीन चला जाता है? फिर देख लीजिए, हलाल को हराम, हराम को हलाल बनाना, हर वो चीज़ जो हमारी ईमान पे चोट डाले वो फितना है। क्या हमारी माशरत बदली आज के दौर में पहले दौर से? तहजीबें बदली, कल्चर बदल गए। हम तो दीन से ना भी टैली करें, हम अपनी नानियों दादियों के दौर से ही आज के दौर को टैली कर लें तो आज हमारी तहजीब, हमारा तमद्दन वो नहीं रहा। पहले लोग इतने एटिकेटेड होते थे, छोटे बड़े से बात करने का स्टाइल होता था, बैठने का, खड़े होने का, कभी क्या मजाल है को किसी बड़े के सामने आंखें फाड़ फाड़ के देखे, आज आप देखें हम पट पट देखते हैं, पलके झपकते भी नहीं है। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि एक ऐसा दौर था कि सवाल ही नहीं पैदा होता था कि बाप के सामने बच्चे आंखें खोले, टीचर के सामने तो सवाल ही नहीं पैदा होता, यूं जिसको कहते हैं कि जान निकलती थी टीचर को देखकर। तो उस दौर में आप देखिए कि फिर बच्चों में गट्स कितने थे, कितनी सलाहियत थी। आज आप जरा सी बात करके देखें बच्चे आपको पटक से जवाब देंगे। बच्चे तो बच्चे, हम बड़े भी किसी चीज़ में पीछे नहीं रहे। तो गोया कि ये फितनों की एक अलामत है कि हमारा ईमान, तहजीब, दीन सब खत्म हो रहा है। इसके बरक्स अगर आप नॉन मुस्लिम स्टाइल ऑफ लिविंग देखिए तो उसमें तहजीब तमद्दन पहले ही नहीं होता। वो अपने आप को बोल्ड कहते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव समझते हैं, लेकिन आप देखा जाए तो जो खूबसूरती इंसान के अच्छे किरदार में होती है वो उसके अलावा नहीं होती। फिर इसी तरह क़यामत से पहले ऐसे ऐसे फितने ज़ाहिर होंगे जिनका इंसान तसव्वुर तक नहीं कर सकता। अल्लाह और आखरत पर ईमान रखने वाले लोग ही इन फितनों से बच जाएंगे। ये आपके लिए बड़ी खूबसूरत बात है। जब भी हम फितनों का पढ़ते हैं तो फिर सोचते हैं कि इनसे बचेगा कौन, तो कहा जो ईमान पे होगा, जो दीन पे होगा। हदीस बड़ी खूबसूरत है, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से। अच्छा, मैंने लफ्ज़ क्या पढ़ा, अब्दुल्ला बिन अमर, ये अब्दुल्ला बिन उमरो तो नहीं? ठीक है, हर किताब में पढ़ाते हुए मैं ये रिमाइंड करवाती हूँ कि उर्दू में बात लोग इसको उमरो पढ़ते हैं, उमरो यार की कहानियाँ, हाँ नहीं, अमर। जब आइन मीम रा के बाद वो आता है तो फिर आइन पे जबर आती है, तो ये क्या है, अमर बिन आस। क्या कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, मुझसे पहले तमाम अंबिया पर अपनी उम्मतों को नेकी की बातें बताना और बुराई से डराना वाजिब था। इस उम्मत की इब्तदा में तो आफियत है, यानी हम उम्मत मुस्लिमा अपने आगाज में तो बहुत पुरसकून थे, लेकिन आखिर वक्त में ऐसी ऐसी मुसीबतें और तकलीफें आएंगी जिसका तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। फिर एक ऐसा फितना आएगा जिसका एक हिस्सा दूसरे को खुशनुमा बनाएगा, यानी पहले फितने में इजाफा कर देगा। मोमिन कहेगा ये फितना तो मुझे हलाक कर डालेगा, लेकिन वो फितना गुजर जाएगा, फिर दूसरा फितना आएगा, और फिर मोमिन यही कहेगा कि ये फितना तो मुझे हलाक कर डालेगा, वो भी गुजर जाएगा। बस जिसे जहन्नम से बचना और जन्नत में दाखिल होना पसंद हो, है हम सबको, सबको पसंद है ना, तो इसे मौत इस हाल में आनी चाहिए कि वो अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखता हो, लोगों के साथ वही सलूक करे जो वो अपने साथ पसंद करता हो, जिस इमाम यानी हाकिम की बैत करे और अहद दे दे, तो फिर जहाँ तक हो सके इसकी इताअत करे, और अगर इसके मुकाबले में कोई दूसरा इमाम यानी बगावत करके आए तो दूसरे की गर्दन मार दो ताकि मज़ीद फितने पैदा ना हो। इस इब्ने माजा ने रिवायत किया। हालात कुछ बने हुए लगते हैं ऐसे, बिल्कुल। आप देखिए कि अभी एक टॉपिक अखबारों में और न्यूज़ में ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू। एक के भी अकवाल चल रहे होते हैं, उसके बयानात, उसकी कवरेज, उसके इंटरव्यूज, तो कोई दूसरा फितना आ जाता है। तो ये बातें हमारे दिल में नबी सल्लम की सच्चाई को भी पैदा करती हैं। फिर अगली बात क्या है कि बाद फितने ऐसे शदीद होंगे कि इनकी तरफ दूर से झांकने वाला भी फितनों में मुबतला हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अन करीब ऐसे फितने पैदा होंगे कि बैठा हुआ खड़े शख्स से बेहतर होगा, खड़ा शख्स चलने वाले से बेहतर होगा, और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। जो शख्स दूर से भी इन फितनों की तरफ झांकेगा वो इनमें मुबतला हो जाएगा। इस वक्त जहाँ कहीं पनाह की जगह पाए, पनाह हासिल करें। इसे बुखारी ने रिवायत किया। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, बैठा तो खड़े खड़े, तो इसको समझिए कि जो बंदा सोसाइटी में जितना इन होना चाहेगा, अप टू डेट होना चाहेगा, जो चाहेगा कि वक्त के तकाजों पे चलो, जो सब करते हैं तुम भी करो मैं भी करूं, वो उतना फंसेगा। मसला आप देखिए कि इसको ऐसे समझिए कि जैसे आज का दौर है। अब आप देखिए कि अगर हम वेस्ट में रहते हैं, हम हर चीज़ के साथ अप टू डेटेड हों, जो लोग सोचते हैं, अपना घर हो, एक हक है इंसान का। लेकिन आप किसी भी ऐसे कंट्री में जहाँ आपकी तनख्वाह इतनी थोड़ी सी है, आप सोचते हैं कि मैं घर लूँ, फिर ज़ाहिर आपको गाड़ी भी चाहिए, फिर आपको घर को सजाने की चीज़ें चाहिए, तो आप देखें कि जूँ ही आप ये सारे चीज़ें पूरी करने निकलते हैं, कदम कदम पे आपके लिए सूद से बचना मुमकिन नहीं रहता, कर्जे लेने से आप नहीं बच पाते, फिर उन घरों के अंदर सिक्योरिटी अलार्म चाहिए, फिर अब इधर का बिजली सिस्टम ख़राब हो गया, यानी जिसने ये घर बनाया उसके लिए और कितने मसले आ गए। और अगर इस फितने को आप इस तरह समझिए कि इससे बेहतर ये कि वो शख्स जो किराए पर रहता है, समझ रहे ना, सिर्फ मैं ये खड़े बैठे और चलने का फ़र्क बता रही हूँ कि जितना आप इस दुनिया में फिर अपने पाँव पसारेंगे ना, आपको उतने मुश्किल बड़े बड़े चैलेंजेस होंगे। अब जब आप लोग कहते हैं कि चलो भाई अपना घर लेना, इसके तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कई कागज़ कई कुछ, चलो हम किराए पे ले लेते हैं। अब वो किराए पे उतना बड़ा घर ले लेते हैं तो उसके लिए उतने पैसे देने पड़ेंगे, अब उसमें कई मसले हैं। फिर उसे होते होते आप देखिए कि उससे बेहतर वही शख्स है जो कहता है अच्छा चलो मैं थोड़ी सी जगह पे अपना गुजारा कर लेता हूँ। मुराद क्या है कि बस ऐसे वक्त में वो बंदा जो नमाज रोज़ा खाना पीना अपने ज़रूरियात की ज़िंदगी पे रहता है वो खुश है। और आज आप देखिए बाज़ दफ़ा लोग दीनदारों के ऊपर ये बात करते होंगे यकीनन कि इनको क्या पता कि हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं। उनके प्रॉब्लम ये हैं कि उनको इस दुनिया में हर तरह से अपडेट रहना है। वो चाहते हैं कि अगर किसी के बच्चों के पास ये चीज़ है तो हमारे पास भी हो, अगर घर में चार लोग हैं तो चार गाड़ियाँ भी हों। चार गाड़ियों का मतलब सिर्फ चार गाड़ियों का पेट्रोल नहीं है, चार गाड़ियों की इंश्योरेंस भी है, चार गाड़ियों की उनकी एनुअली कोई उसकी चेकिंग फीस भी है। तो जितना भी पाँव पसारेंगे, और बड़े हौसले की बात है कि इंसान अपनी ज़ात पर इतना खर्च करे। बाज़ दफ़ा थोड़ी सी 19-20 मुश्किल करने से इंसान का गुजारा हो जाता है, लेकिन फिर ज़िंदगी में हर बंदे का एक अपना असूल है। अब इसको सिर्फ समझाने के लिए अपनी माशरत से लेते हुए आप देखिए कि घर में अगर पांच लोग हैं कहीं भी जाते हैं एक ही गाड़ी है तो वो एक गाड़ी में बैठेंगे ना, ला मुहाला सब एक वक्त में निकलेंगे। गाड़ी में बैठे हुए एक छोटी सी गाड़ी में एक फैमिली इकट्ठी होगी तो उनके अंदर कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। फिर मिसाल है कि एक बंदा उस वक्त कहता है कि चले तिलावत सुनते हैं तो चार सबर करके बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर एक किसी को वॉशरूम जाना पड़ेगा तो उस एक के लिए गाड़ी रुकेगी थोड़ी देर में, हो सकता है किसी एक को भूख लग जाए तो उसके लिए चार को अपनी मर्जी छोड़नी पड़ेगी। होगा क्या, आपस में यूनिटी पैदा होगी, सब्र पैदा होगा, बर्दाश्त पैदा होगी और घर वालों में कुर्बत होगी। कोई बात कर रहा है एक तो सारी सुन रहे हैं। अब इसको अपोजिट लीजिए, पांच ही लोग हैं घर के, जाना था किसी दावत में तो हर एक कहता है जी मैं तो अपनी अपनी गाड़ी में जाऊँगा, मैंने पहले आना है। वो कहते हैं अम्मी बाद में जाना है, आप बोर करेंगी वो करेंगी। अब पहले तो आप घर से पाँच गाड़ियों में निकले, आपकी आपस में हारमनी कम बनी, जहाँ आपका दिल चाहे रोके जहाँ ना रोके तो आपके अंदर बर्दाश्त नहीं रहेगी। आप फ़र्क समझ रहे हैं, ये बुक फ़ायदा नहीं देगी जब तक हम सब ने इसको अपनी अमली ज़िंदगी पर रख के ना देखा। आज हमारे घरों के नक्शे क्यों बदले हुए हैं कि हमने हर बंदे को इंडिपेंडेंट कर दिया, सिंगल यूनिट अमीबा फैमिली बन गई, कोई किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता। हत्ता कि मैंने ये हद तक देखा कि मियाँ बीवी दोनों किसी पार्टी में जाते हैं, मियाँ अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं बीवी अपनी, क्यों कि जी मियाँ ने इसके बाद उधर जाना है ये वो मैंने ये जाना है, कोई आपस में थोड़ा बहुत सब्र बर्दाश्त ही नहीं है। तो फिर नुकसान क्या हुआ, अब मेरी अपनी ज़िंदगी आपकी अपनी ज़िंदगी। हम पांचों घर के लोग दिन में पांच गाड़ियों में सारा दिन घूम के रात को जब आते हैं तो हमारे अगले दिन के प्लान पहले से रेडी हैं। मुझे सुबह 6 बजे उठना है, आपको 5 बजे उठना है, आपको 9 बजे जाना है, हम कहाँ बैठ के खाने की टेबल पे इंतज़ार करें कि सब आ जाएं। मैं खाना खाऊंगी सो जाऊंगी, आप आएंगी आप खा जाएंगी, नतीजा क्या निकला। क्या आज इंसानों के पास दौलत माल सब कुछ है, सुकून नहीं है, खुशी नहीं है, एक दूसरे से सोच नहीं मिलती। तो पहले दौर में ये फितने कम थे, लोग इकट्ठे थे और उसमें ना चाहते हुए हमारे बच्चों की तरबियत हो जाती थी। ये आज माँ इतनी कोशिश करती हैं बेचारी, सारा सारा दिन ले लेके फिरती हैं, कभी मस्जिदों में कभी मदरसों में, वीकेंड स्कूल सैटरडे स्कूल, नतीज फिर कोई नहीं निकल रहे। आज भी उन्हीं घरों के बच्चे मैंने देखा है कि हम्बल और नाइस हैं जिनके अंदर ये सोशल टाइज मजबूत है, चुप करो यही खाना पड़ेगा, यानी जिन्होंने अभी भी कह सकते हैं कि किसी हद तक सादगी को अपनाया हुआ है या माँ का या बाप का होल्ड है। जहाँ अपने बच्चों के अंदर ये होल्ड दे दिया वहाँ हालात बिगड़ जाते हैं। तो हम सब ने कोशिश करनी है इस किताब को पढ़ते हुए भी कि अपने घर के माहौल को फितरत पे लेके आएँ और थोड़ी बहुत बर्दाश्त अपने बच्चों को सिखाएं ताकि बड़े बड़े फितने ना आए। फिर आप देखिए ना ये फितने बढ़ते कैसे हैं, अब बात शुरू हुई है तो इसको और भी समझें कि एक माँ कहती है कि मैंने अपने बच्चे की शादी की अपने भाई की बेटी से। मिसाल है बच्चा बाहर का था, बेटी पाकिस्तान से आई। अब वो हुआ क्या कि माँ ने तो बड़े लाड़ और चौ से की, अब हुआ क्या कि लड़का जो है वो उस बीवी के साथ बात ही नहीं करता। वो कहता जिसको तो समझ नहीं, इसको तो पहनना नहीं ओढ़ना आता, इसको पार्टी में नहीं जाना। या माँ ने की और वो कहता मैंने अभी इधर करनी नहीं। अब रिश्ता छूटता है तो भाई बहनों का रिश्ता ख़राब होता है। तो वो माँ दुखी होकर कहती है कि समझ नहीं आती कि हमारा कसूर क्या है। मैंने कहा कि होता क्या, क्यों कहता है। कहते वो कहते मैंने वो फलां जैसी से शादी करनी है, मुझे इससे नहीं करनी। और वो फलां किसी मीडिया की हीरोइन थी। अब आप सोचिए, आप इस बात को समझिए कि जिस माहौल में हम बच्चों को पैदा होते ही कपड़े पहनाते हुए भी पूछते हैं बेटा क्या पहनोगे, बेटा क्या बनाऊं, बेटा क्या खाना है, तो क्या वो आपकी पसंद के रिश्ते कर लेंगे। और आप ले आइए वो वापस कर देते हैं रिजेक्ट। उनको पता है इन मुल्कों में 3 महीने तक तो रिजेक्शन चलती है, जाके वापस करो, बस स्लिप रखो अपने पास। जहाँ ये सोच बन जाती है कि कोई बात नहीं, आप रिटर्न फ्री है, आपको जब जाएंगे जाके मनी बैक गारंटी है, रिश्ते वापस होते हैं। अल्लाह खैर करे, कोई 10 में से कुछ 6 रिश्ते कामयाब होते हैं तो 4 फ्लॉप भी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हुए ज़रूर इन चीज़ों पर गौर करें कि हमारे अमली तौर पर मसले क्या हैं और इन मसलों का हल क्या है। इसी तरह अगली बात देखिएगा कि फितनों की शिद्दत का आलम यह होगा कि एक आदमी सुबह के वक्त मोमिन होगा और शाम होते ही काफिर हो जाएगा, एक आदमी शाम के वक्त मोमिन हो जाएगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। यह हदीस आगे आएगी एक ख़ास मसले में जहां हम इसको देखेंगे। फितनों के दौरान ईमान पर कायम रहना इतना ही मुश्किल होगा जितना आग का अंगारा हाथ में लेना मुश्किल होता है। कभी आपने आग का अंगारा हाथ में लिया? मेरा इलाक इंसान की चीखें निकल जाती हैं। तो जितना मुश्किल हाथ में जलता हुआ अंगारा लेना है, उससे ज़्यादा ईमान पे मुश्किल होना है। आज कई लोगों का मसला ही तो यह है बेचारों का, हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि ईमान को बचाते बचाते इस दुनिया के तकाजे पूरी करें, लेकिन आप देखिए कि अपनों ही की तरफ से कितना रिएक्शन है। हदीस क्या है इब्न अब्दुल्ला बिन मसूद से, नबी सल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाद सब्र करने वाले दिन आएंगे, इनमें सब्र करना ऐसा ही मुश्किल होगा जैसे आग का अंगारा मुट्ठी में लेना। इस वक्त सब्र करने वाले के लिए 50 आदमियों के बराबर अजर होगा। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या 50 आदमी इनमें से या हम में से? तो आपने फरमाया, तुम में से। इसे बज़ार ने रिवायत किया। क्या पता चला, आज का दौर और आने वाले दौर में ईमान पे जो कायम रहेगा तो सहाबा से 50 गुना ज़्यादा अजर पाएगा। इसको आप यूँ समझिए कि जैसे जो सीधे साधे मुल्कों में रहते हैं या जहाँ इस्लाम बहुत है, या मतलब ज़ाहरी नफ्स की वो चीज़ें नहीं पूरी हो सकती जो कि हम देखते हैं, अब वो भी अपनी इज्जत बचाते हैं, अगर अपनी इज्जत की हिफाजत करते हैं तो उनको भी अजर है। लेकिन जो लड़के या जो लड़कियाँ इन माहौल में जहाँ हर तरफ ही आज़ादी है, यहाँ के अगर नेक रहते हैं तो फिर उनका दर्जा अल्लाह के यहाँ कितना ज़्यादा है। बुरे माहौल में खुद को बचा लेना, ये असल नेकी है। इसी पे इंशाल्लाह अगले वीक जब हम सूरत शुरू करेंगे सुबह में, सूरत यूसुफ में, तो उसमें बहुत डिटेल से बात होगी कि कैसे यंगस्टर्स जो हैं आज के माहौल में अपने दीन और ईमान को बचाएं। तो अल्लाह ताला की ज़ात देखिए कि जहाँ मुशक्क़त ज़्यादा है वहाँ अजर भी ज़्यादा दे देती है। क़यामत के फितने इस कदर शदीद होंगे कि लोग दज्जाल की तमन्ना करने लगेंगे ताकि जल्दी जल्दी क़यामत कायम हो। हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा कि दज्जाल के आने की तमन्ना करेंगे लोग। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। देखिए सहाबी का अंदाज़ कितना प्यारा है ना बात करने का। ऐसा क्यों होगा? आपने फरमाया, इस वक्त फितनों की वजह से ऐसा ही होगा। इसे तबरानी ने रिवायत किया। क्या पता चला कि इस तरीके से इंसान की ज़िंदगी में ये मामले होंगे, क्योंकि लोगों के लिए उस वक़्त ज़िंदा रहना मुहाल होगा। आप देखिए ना कि एक शख्स बीमार है, इतना बीमार है, इतना बीमार है कि अब वो बेचारा अपनी ज़िंदगी से जी रहना है तो वो क्या चाहता है? चलो मौत आ जाए, लेकिन मर के भी ना चैन पाया तो किधर जाएंगे? तो ये सारी चीज़ों को सुनते वक्त अब हम अपने आप को देखें और सोचें, खुद से भी पूछें, दुआ भी करें कि अल्लाह ताला तो हम सब से इन चीज़ों को दूर करना और हमें अपने नफ्स पर काबू पाते हुए तेरे हुक्मों के मुताबिक चलने और जीने वाला बना दे। ये तो थे जनरल फितने। इनको पढ़ते सुनते वक्त आपने कुछ महसूस किया तो शेयर कीजिए, ऑनलाइन पे भी लिखिएगा आप लोग कि इस टॉपिक को जितना भी हमने सुना इसके बाद आपने क्या फील किया।
आई थिंक इट्स ये बात वो वाकई मैं महसूस करती हूँ कि अब काफी पहले से काफी फर्क है। अभी पिछले दिनों में अपनी बेटी को कह रही थी कि मेरे से आंखें मिला के नहीं बात करूँ, बड़ों के साथ हम लोग में जरूरत नहीं होती थी कि हम लोग बातें करें अपनी अम्मी के साथ आंखें मिला के। कहती मम आप मुझे कह रही हूँ आंखें नहीं मिलाओ, स्कूल में जाओ टीचर के सामने अगर आंखें नीचे करके बात करो तो टीचर गुस्सी होती है कि तुम जरूर तुम्हारे दिल में कुछ यानी कि गलत है कि तुम आंखों में आंखें मिला के।
अब आप इस बात को देखिए, देखिए प्रैक्टिकली देखिए ना कि हमारे माहौल में ये चीज़ नहीं पसंद की जाती कि बच्चे या हम इवन औरतें मर्दों को यानी एक तकद्दस है बहरहाल कि ना आंखें मिलाए ना। और जब वेस्टर्न माहौल में बच्चों को फोर्स किया जाता है कि आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ देख के बात करो, लुक एट मी, तो जी डबल माइंडेड है ना, तो वो फिर उनके लिए टीचर की इज्जत क्या रहेगी? आप खुद देखें, दो लोगों को खड़ा करके देख लें, एक नीचे झुक के देखता रहे और एक आपको देखे, किसको देख कर ज़्यादा प्यार आता है? कौन ज़्यादा क्यूट लगता है? कौन मासूम लगता है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हकीकत में इंसान की शख्सियत पर बहुत गहरा असर डालती हैं। جی کوئی اور بات کسی کے ذہن میں ایسی ہو کہ جس سے کوئی سوچ ملے؟ جی آپ.
جی میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری قوم اس قدر فتنے پڑ جائے گی, یعنی کہ مجھے رسٹی چیزوں کے پیچھے بھاگے گی, اور آج وہی وقت ہے. ہم دیکھا دیکھیے کہ میرے نیبر کے پاس ہی ہے, میری نند کے پاس ہی ہے, میری جٹھانی کے پاس ہی ہے, ان چیزوں میں ان کا گھر ہے تو میرا گھر اتنا بڑا ہونا چاہیے. اور باقی دیکھا جائے تو یہ بڑے بڑے گھر اور یہ بڑے بڑے فتنے, اس کے ان کے پاس فون کون سا ہے, اس نے کون سے تعلیم پہنا, یہ چیزیں میں کہتے ہیں اتنی جب انسان قرآن سے جڑتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ بوجھ ہے, دل کرتا ہے کہ ان کو نکالیں.
جی یعنی آج خوشی نہیں رہی, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے کہ خوشی نہیں ہے لیکن خوشی کے اسباب ہیں. آسائش کے اسباب ہونا اور بات ہے, اور آسائش کا ملنا اور بات ہونا. جیسے اب آپ نے کہا کہ بڑے گھر ہیں, اب آپ امیجن کیجئے اور فیملیز دن بہ دن چھوٹی اور گھر بڑے, اب دو بچے خوشحال گھرانا, آپ ذرا امیجن تو کیجئے کہ بڑا سا گھر ہے اور دو بچے ہیں, ایک بچہ کسی ایک فلور میں اپنے کمرے میں اور دوسرا بچہ دوسری طرف, ماں نیچے ہے, اب بچوں کو بلانے اوپر جانا بعض صفحہ ماں کو محال لگتا ہے, پورے گھر میں آپ پھر انٹرکام, سب سے پہلے جا کے اپنے گھروں کی انٹرکام کاٹیں. یہ آج یہاں تو آپ لندن میں خوش قسمت ہیں کہ آپ کے گھر چھوٹے ہیں, نہیں اوپر آواز دیتے ہیں سارے گھر میں پتہ چلتا ہے اماں نے بلایا, دوڑتے ہوئے بچے آتے ہیں. اور آپ ذرا گھر بڑے اپنے ہی ملکوں میں دیکھیے, ہمارے اپنے گھروں میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے ریلیٹیوز ہیں تو آپس میں بات ہم ان کے ساتھ فون پہ کرتے ہیں, ریئلی بلیو میں ان سے پوچھتے ہیں آپ گھر میں ہیں, اچھا کس فلور میں, کس کمرے میں, یہ ہمارے اپنے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پھر اس سے دوریاں کتنی ہیں, پھر اتنی جھجک پڑ جاتی ہے, بےگانگی ہے. جی گھر میں بنا کیا, یہ بھی ایک فتنہ ہے. جی بالکل, یہ کہتی ہیں کہ تھوڑے سے ان کے آن لائن کے بھی کمنٹس پڑھ لیتے ہیں. دا کڈس لرن دس فرام اس, دے اسٹارٹ کمپیئرنگ دیم سیلوز ود ادر چلڈرن. جی بچے بھی پھر ہم سے ہی سیکھتے ہیں نا یہ بات کہ دوسروں سے مقابلہ کرو. وی آر آلویز ٹرائنگ ٹو بی ان ریس آف دی ورلڈ لگژریز, یہ مسئلہ نا کس کے گھر میں کیا ہے کس کے نہیں, ان کی تو دو گاڑیاں ہیں تو آپ کی ایک ہے تو یہ کیوں ہے. اسکول میں چھوٹی کلاس میں ہی لڑکیاں بوائز سے نفرت کرتی ہیں, وہی بڑے ہو کر شوہر کے دل میں عزت نہیں رہتی. جی آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ بچپن سے بچی بچے کو ساتھ بٹھاتے ہیں تو وہ لڑکی لڑکے کی فرق ہی ختم ہے. پہلے کبھی شادی سے پہلے کسی بچی سے پوچھے, سب سے بڑا غم یہ ہوتا تھا کہ ایک اجنبی میرے ساتھ کمرے میں ہوگا یا میں اس کے ساتھ گاڑی میں اکیلی ہوں گی. مجھے آج بھی یاد آتا, ریئلی اپنی فیلنگس بتا رہی ہوں کہ شادی سے پہلے جب ہم ٹین ایج میں تھے تو یہ احساس کہ شوہر بیوی یہ گاڑی میں اکٹھے ہوں گے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے تو ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے تھے سوچ کے. آج آپ کہتے کہتے ہیں بیکورڈ. آپ شادی کے دن جو شادی کی رسومات تھی پہلے دور میں اس میں فرق دیکھ لیجیے آج, کہ ایک خاص حد نکاح ہو بھی جاتا تھا تو پھر بھی لڑکے لڑکی کو ساتھ میں نہیں بٹھاتے تھے. آج آپ دیکھیں ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے پورے ہوٹل میں گھومتے پھرتے ہیں اور پکچرائزیشن ہوتی ہے. تو بہرحال اب اس پہ ہم باتیں جتنی کریں خون ہی چلے گا. اب ہم اگلے ٹاپک میں الگ الگ چیزوں کو دیکھیں گے کہ فتنے کیا ہوں گے.